जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी यमुना तेरा वनाचारी, यमुना तेरा वना, यमुना तेरा वनाचारी, यमुना तेरा Rama 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 Rama
से पंच नेता इंदौर और प्रेमानंद आप सब लोग मेरे पीछे दौड़ाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है इस रविवार के कार्यक्रम में। तो आप में से कोई पहली बार आया है इस प्रोग्राम में, तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय है आज की चर्चा का, कलयुग का धर्म क्या है। क्या है चर्चा का विषय? कलयुग का धर्म। कैसे तो हम जानते हैं बच्चों को शाम, तो जिस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं, मनुष्य जीवन बहुत अधिक दुर्लभ है और बहुत अधिक अलग अलग शरीरों में भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और जो इतना मूल्यवान है और जिसमें बहुत अधिक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं। तो यदि जो व्यक्ति इस सुविधा को, इस फैसिलिटीज को यूज नहीं करता, उससे अधिक पापी व्यक्ति शास्त्र कहते कोई नहीं है। उसी व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं आत्महा, जो जानबूझकर क्या कर रहा है, अपने आत्मा का हनन कर रहा है, विनाश कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आत्मा की क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। जो व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन की, जो मनुष्य जीवन का जो लाभ है उसको उठाता नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए कि मैं इस भौतिक संसार में आ गया हूं, ऐसे स्थान में आ गया हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है। हमारा हिता हित किछु नाही जानी, शास्त्र कहते हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, नीच हूं, पतित हूं, कि मैं ये नहीं जानता कि मेरा हित किस चीज में है और मेरा अहित क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है और जो चीजें नहीं करनी है, मतलब करनीय क्या है, अकरणीय क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। और उसी व्यक्ति को वास्तव में मनुष्य कहा गया। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो टाइम है, काल है या समय है, वो चार भागों में उसको विभाजित करते हैं, और जिनको युग कहा गया है। क्या कहा गया है? युग। तो हम सब जानते हैं, सुनते हैं कि चार प्रकार के युग हैं, सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलि युग है। तो ये जो युग है एक दूसरे से डबल है, उनकी जो आयु है, जैसे इंग्लिश में कलियुग को एज ऑफ कली कहा जाता है, कलियुग, तो मतलब एज मीन्स उसकी आयु। तो आयु क्या है कलियुग के? शास्त्र कहते 432,000 साल का कलयुग होता है, और अभी हमने कितने साल बिताए हैं, 5000 साल बीत गए हैं कलयुग की शुरुआत के, ये 5000 साल बीते हैं। तो उसी प्रकार से त्रेता युग उससे दुगना होता है, 8,864,000, तो उससे और दुगना द्वापर है, फिर त्रेता है और सत्ययुग आदि है। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों से इंफॉर्मेशन मिलती है इन युगों के बारे में। और ऐसे अलग अलग युगों में धर्म के जो चार स्तंभ हैं, वो प्राप्त होते हैं। चार स्तंभ क्या है, धर्म चार पिलर्स में वो खड़ा है, जो धर्म का प्रतीक है। तपस्या है, स्वच्छता है, दया है और सत्य है। ये चार धर्म के क्या है, पिलर है, स्तंभ है। तो ये अलग अलग युगों में ये प्रभावशाली होते हैं। सत्ययुग में चार होते हैं, बिल्कुल प्रभावशाली होते हैं। त्रेता में कम हो जाता है, द्वापर में क्या होते हैं, और कम हो जाता है, और कलयुग में वास्तव में केवल एक बचता है धर्म का जो स्तंभ है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब राजा परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज थे, उत्तरा के पुत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र कौन थे, परीक्षित महाराज। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब पांडवों के बाद राजा बने और कलयुग की शुरुआत ही हो गई थी उस समय, तो वो क्षत्रिय थे और अपने राज्य को देखने के लिए वे अपने महल से बाहर निकले रथ पर सवार होकर। तो उन्होंने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य क्या था, उन्होंने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति, राजा का वेश धारण करके गाय और बैल पर प्रहार कर रहा है। धर्म का प्रतीक कौन है, बैल है, और प्रहार करके उसके जो तीन पाव है उसने तोड़ डाले हैं मार करके, और वो बैल एक पांव पर खड़ा है और रो रहा है, उसके साथ गाय की भी वही दशा है। तो क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार वर्ण है, समाज की सुव्यवस्था कैसे है, ये चार वर्ण और चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, मैंने जो चार वर्ण और चार आश्रमों को बनाया है, स्थापित किया है उनके गुण और कर्मों के आधार पर। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, या जन्म से कोई क्षत्रिय आदि नहीं है, वैश्य, उनके कर्मों से। व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है लेकिन कार्य किसका कर रहा है, शूद्र का, ये नहीं शास्त्र कहते, ऐसे नहीं शास्त्र कहते हैं। उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, उसमें क्षत्रिय के गुण होने चाहिए, उसमें वैश्य के गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्षत्रिय का मतलब है क्षतत्रायति इति क्षत्रिय, जो क्षत मतलब कष्टों से मुक्ति दिलाता है अपने प्रजा आदि को, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ये उसका प्रायः महत्वपूर्ण ड्यूटी है। तो जो परीक्षित महाराज ने देखा कि गाय रो रही है, बैल की ये दशा है, जो धर्म का स्तंभ है, और एक शूद्र व्यक्ति उन पर प्रहार कर रहा है, तो वो उनको, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मारने ही लगे, उनको मारने ही वाले थे उस समय। वो वास्तव में कौन था, कली। कौन था, कली, कली पर्सोनिफाइड, मतलब कली जिसने एक व्यक्ति का, क्योंकि कली कोई निराकार नहीं है, कली एक व्यक्ति भी है जो इस चीज को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे गंगा नदी है, वो भी एक क्या है, देवी है, लेकिन एक जगत में वो जल के माध्यम से सभी सबको पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। तो उसी प्रकार से ये कली ने क्या किया, इन पर प्रहार कर रहा था उसी समय। परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाली और उसको मारना चाहा, उसी समय वो कली उनके शरणागत हो जाता है, और वो कहता है कि आप तो धर्म के रक्षक हो, और आप क्या करो, आपकी मैं भी तो प्रजा हूं, आप मुझे स्थान प्रदान करो जहां मैं रहूंगा। क्योंकि राजा का मतलब है, प्रजा का मतलब है, जो भी जीव उसके राज्य में है वो उसकी प्रजा है, चाहे वो पशु है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, गरीब है, अनपढ़ है, जो भी है, पशु भी प्रजा है राजा की। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है, आजकल के राजा क्या करते हैं, मनुष्यों का देखभाल करते हैं जब तक तो उनको वोट दे रहे हैं, और बाकी समय में गाय आदि की हत्या करते रहते हैं, पशुओं को मारते, केवल अपने जीवा की लालसा या तुष्टि के लिए। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने देखा कि वो गले उनकी शरण ग्रहण कर रहा है, कांप रहा है, हाथ जोड़कर उनको कह रहा है कि आप मुझे स्थान दे दो, मैं आपके यहाँ निवास करना चाहता हूँ, आपके अनुशासन में मैं रहना चाहता हूँ। तो ऐसे कले को परीक्षित महाराज ने चार स्थान दिए। इन चार स्थानों में कले का सर्वाधिक प्रभाव है। ये चार स्थान कौन से हैं? अभ्यर्थिता स्तदा तस्मै स्थानानि कले ददो द्योतम पानम श्रीहाशुना यत्र अधर्म चतुर्विधा यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये चार प्रकार के स्थानों में अधर्म निवास करता है, धर्म निवास नहीं करता। तो हमें देखनी चाहिए कि ये कौन से प्लेसेस है, कौन से स्थान है जहां अधर्म निवास कर रहा है, धर्म निवास नहीं कर रहा है। तो जब उस कली का निवेदन सुना तो परीक्षित महाराज ने कहा कौन से स्थान दूंगा मैं आपको, द्योतम। द्योतम, द्योतम का मतलब है जुआ। क्या है? जहां भी जुआ सट्टा जो भी चीजें खेली जाती है या जो लोग उससे मग्न है उसमें, वो कले के प्रभाव में से प्रभावित है। द्योतम, द्योतम पहले ही उन्होंने कहा द्योतम। दूसरा क्या था? पानम। पानम मतलब नशा, किसी भी प्रकार की नशा है, मदिरा है, शराब है, गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट और क्या हो सकता है, जितने भी नशा की चीजें हैं, कले को परीक्षित महाराज ने कहा तुम्हारा निवास उस स्थान में है। और तीसरी चीज उनको दी श्रीहा। श्रीहा का मतलब है अनैतिक संबंध स्थापित करना, पति पत्नी के अलावा पर पुरुष या पर स्त्री गमन, वो जो संबंध है वो जहां होते हैं या जो लोग उन कार्यों में लिप्त हैं वो कले के प्रभाव से प्रभावित है। और सुना, सुना मीन्स मांसादि, मांसाहार करना, मांसाहार में बहुत सारी चीजें हैं। तो कलियुग को ये चार चीजें दी और कलियुग इन चार चीजों से अपना साम्राज्य क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इन चार चीजों में लिप्त है तो वो चार जो धर्म के स्तंभ है वो उससे ब्रेक हो जाते हैं, चार धर्म के स्तंभ जो है वो टूटने लगते हैं। पहला क्या है? द्योतम। द्योतम से क्या होता है? सत्य खत्म हो जाता है। जुआ आदि, जुआ से क्या खत्म हो जाता है? सत्य, ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलने का, व्यक्ति झूठा ही बोलता रहेगा। और जो मदिरा आदि, नशा आदि करते हैं नाना प्रकार की, उससे धर्म का दूसरा जो पाव है तपस्या, वो लोग तपस्या नहीं कर सकते, तपस्या खत्म हो जाती है। और जो अनैतिक संबंध रखते हैं उनसे क्या खत्म हो जाता है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, शौच जिसको कहा गया है। और आखिरी है मांस भक्षण आदि, जिससे शास्त्र कहते हैं दया क्या हो जाती है, खत्म, दया। तो वास्तव में कलयुग में ये जो चार चीजें हैं वो बहुत अधिक रूप से लोग इससे प्रभावित हैं, है कि नहीं? तो ये जो कली है वो इससे और रुका नहीं, उन्होंने कहा प्लीज आप मुझे और भी दे दो स्थान जहां मैं रहो। परीक्षित महाराज ने कहा जहां गोल्ड, गोल्ड में सोना है, जहां गोल्ड होगा वहां तुम्हारा निवास होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के साथ, सोने के साथ क्या होता है? घमंड आता है, काम है, उससे वैर, रजोगुण, ये सब चीजें पैदा होती है ना, लोग लड़ाई झगड़े करते कि नहीं सोने गोल्ड आदि के लिए। तो इस प्रकार से कलि का जो निवास है शास्त्र कहते हैं कि इन चार स्थानों में, इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कि अथे तानी न सेवेत, व्यक्ति को जो अपने जीवन में भलाई चाहता है जो व्यक्ति पुरुष, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन चार चीजों से अपने आप को इसके संपर्क से दूर रखना चाहिए। विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु, जो भलाई चाहता है अपने जीवन की, उससे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए, लोग कहते हैं हम यदि जुआ नहीं खेलेंगे, नशा नहीं करेंगे, मांस भक्षण नहीं करेंगे, असत संग नहीं करेंगे, अनैतिक संबंध नहीं रखेंगे, तो जीवन में आनंद ही क्या बचा है कि नहीं, क्या एंजॉय क्या करेंगे हम? आपने हमारे जीवन का एंजॉयमेंट को ही निकाल दिया, क्या लाइफ फिर क्या रहेगा लाइफ में, सोचते कि नहीं लोग? लगती यही है आनंद क्या है, सैलरी मिल जाता है और व्यक्ति जाता है मांस भक्षण करने होटलों में, और शराब पीता है, शराब पीके गटर में गिर रहा है, लेकिन सोचता है कि मैं महान राजा हूं, सिंहासन में बैठा हूं, गिरा कहां है, नाले में गिरा हुआ है। तो ऐसी दयनीय स्थिति है। आजकल अधिक से अधिक लोग इस चीज में बिल्कुल बुरी तरह से मग्न है। इसलिए शास्त्र कहते हैं इस प्रकार का जो आनंद है, सुख है, एंजॉयमेंट है, यह शुरुआत में अमृत के समान लगता है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, बहुत बुरा है। कौन सुखी हुआ है इसके द्वारा? नहीं। हमने हजारों लोगों को देखा है जिनसे मिले हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, बहुत बड़ा धनवान हो, जो इन कार्यों में लिप्त है, उसका उसका जीवन पापमय, पाप कर्मों से भरा हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण पाप कर्म है, क्योंकि यही चार चीजें आपको और पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन चार चीजों में कोई व्यक्ति लिप्त होता है और वो व्यक्ति वास्तव में पशु बन जाता है। आहार निद्रा वय मैथुन च सामान्य मेहता पशु भीर नराना धर्मो ही देशा अधिको विशेषो धर्मे ना ही ना पशु भी समानम। यदि जीवन में धर्म नहीं है, धर्म क्या है उसकी जानकारी नहीं है, धर्म के रास्ते पर चल नहीं रहा है, तो वह व्यक्ति क्या है, पशु है। हम देख सकते हैं कि कितने पशु हैं समाज में, जो इस शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में पशु है। और इन चार चीजों में जो व्यक्ति लिप्त है, वो व्यक्ति कली की क्या है, एजेंट है। क्या है, एजेंट, कली का चेला। शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कली का शिष्य है, कली का डिसाइपल है। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि हम कलियुग में हैं, तो ये कली का निवास कहां है, जो हमें प्रभावित करेगा पाप कर्म करने के लिए। और इन चार पापों में व्यक्ति लिप्त होगा तो वो मनुष्य नहीं है, उसकी तुलना पशु से की गई है। इसलिए कब ये कलियुग शुरू हुआ, शास्त्र कहते यस्मिन दिने हरिर यातो देवम संत्यज मेदिना, मेदिना मीन्स पृथ्वी। जिस दिन भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा द्वापर युग के अंत में, उसी दिन से क्या शुरू हो गया, कलियुग शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि युग शुरू हो जाता है तो आदमी सब चेंज हो जाते, नहीं, युग के प्रभाव से वातावरण आदि में बदल आ जाता है, लोगों के चेतना में परिवर्तन आ जाता है, उनके साइज आदि में परिवर्तन आ जाता है। युग बदलता है तो सारी चीजें नष्ट नहीं होती, क्या होता है, केवल चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग सोचते कि अरे पहले के दिन बहुत अच्छे थे, अभी क्या हो रहा है, कलह, कलमश, कष्ट, विपदाएं, हर चीज सांसारिक जीवन में आ रही है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं आ रही है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा में व्यक्ति के जीवन में क्या आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, टेंशन आ रही है, चिंताएं आ रही है। तो इस प्रकार से ये किसके लक्षण है, कलियुग के लक्षण है। तो ये कलियुग के लक्षणों को भी हमें समझना चाहिए व्यक्ति को, तब आप समझ सकते हो कि वास्तव में कलियुग का धर्म क्या है। कलियुग के लक्षणों को समझना होगा, और यदि उनको आप समझते हैं तो आप तभी समझ सकते हैं कि कलियुग का धर्म क्या है, कैसे एक व्यक्ति को इस कली के प्रभाव से बचा जा सकता है, कैसे इससे इस प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। और यही कार्य एक बुद्धिमान व्यक्ति का है। जो मूर्ख है, हाँ, वो उसी में लिप्त होना चाहते हैं। अभी सुअर को आप कितना पाठ पढ़ा हो, हाँ, उसके पीछे आप ले जाओ हलवा बना के कि ओ मिस्टर सुअर आप ये हलवा खा लो, वो कहेगा नहीं मुझे वो ना मल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी चेतना इतनी गिरी हुई है। उपदेश ही मूर्खानां प्रकोपाय उपकल्पति, मूर्खों को उपदेश देना हाँ वो क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान बनो, विवेकवान पुरुष बनो, हाँ, जिससे अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ऐसे कलयुग में हम निवास कर रहे हैं, तो शास्त्र इतने परिपूर्ण है कि शास्त्रों में कलयुग आने से पहले ही सारी चीजों को बता दिया है कि क्या घटित होगा धीरे धीरे कलयुग में। इसलिए शास्त्र को माता कहा गया है, क्या कहा गया है, माता, क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान हमारे परम पिता है। यदि हमें पिता के बारे में जानना है तो किससे पूछना होगा, मां से पूछना होगा। कोई कहेगा कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा, तब पता चलेगा मेरा पिता कौन है, लेकिन नहीं, आप अपनी मां से जाके पूछो कि बताओ मेरे पिता कौन है, वो जो बोलेगी उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास। हाँ, तो सही है। तो उसी प्रकार से शास्त्र हमारी माता है, शास्त्र हमें परम पिता के बारे में, भगवान के बारे में हमें जानकारी देते हैं, और किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा सकता है उसके हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का रोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता दी, क्या आवश्यकता थी भगवद गीता देने की, भगवद गीता इसी कारण से दी कि उस अमूल्य ज्ञान के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। और जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम भगवत भक्ति के कार्यों में लगते हुए अंतिम क्षण में सही रूप से इस शरीर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। आए क्या, नहीं, कौन रहा है अब तक, आज तक नहीं। हम ट्रेन से सफर करते हैं तो ट्रेन में हम कोई रहने के लिए नहीं जाते, जर्नी खत्म, टिकट खत्म, उतरना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारा सीमित, हमारे कर्मों के अनुसार हमें दे दिया गया है, सीमित समय दिया गया है, सीमित लिमिटेड सांसें दी गई हैं। हमारा जीवन हमारे आयु से नहीं बल्कि हमारे सांसों पर निर्भर है कि कितनी आप सांसें गिन के ही ले सकते हो, उससे आगे आप चाहे हॉस्पिटल में आपको वेंटिलेटर लगाया जाए तभी भी आप सांस नहीं ले सकते, खत्म। इस कारण से बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा असली कर्तव्य क्या है, क्यों मैं इस जगत में हूं। सारे लोग एक जैसा ही भौतिक कार्य में मग्न है और कोई भी व्यक्ति सुख या शांति का जीवन नहीं जी रहा है, तो क्यों मुझे क्यों बनाया गया है, क्यों मनुष्य जीवन दिया गया है। वास्तव में मनुष्य जीवन दिया गया ही है इस भौतिक जगत से वापस भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान को समझने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो इस कारण से कलियुग में हम हैं, तो शास्त्र कलियुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भागवतम में वर्णन आता है प्रायः अल्पायुषः सभ्य, ये जो कलियुग के लोग हैं उनकी आयु अल्प आयु के होंगे। हाँ, पहले कितने जीते थे लोग, 100 साल के। हाँ, जैसे मुझे याद है हमारे ग्रैंडफादर की जो सिस्टर थी, ग्रैंडफादर की सिस्टर, वो 110 साल जी थी, 110 साल, बहुत ओल्ड हो गई थी। लेकिन अभी वैसे कलयुग की आयु 100 साल की है। हाँ, द्वापर युग में लोग 1000 साल के लिए जीते हैं, त्रेता युग में 10,000 साल के लिए, और सत्ययुग में 1,00,000 साल की आयु होती थी। इसलिए हम सुनते हैं ना कि विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की सत्ययुग आदि के जीव है। तो उस प्रकार से कलयुग में 100 साल की आयु है, लेकिन किसी के पास भी 100 साल का समय नहीं है। 60 साल, 70 साल, 40 साल में बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति। उसके चेहरे को देखोगे तो सारे बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं। तो वो क्या आगे जिएगा, 70 साल, 75 साल कोई जिया तो बहुत महान है। तो शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में लोगों की आयु बहुत अल्प होगी। कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य, मंद भाग्य होगा। हाँ, मंदभाग्या ही उपद्रता, और थोड़ी थोड़ी बातों में कलियुगा के जीव आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, लेकिन ये कलियुगा का लक्षण है, गुण है। और आप देखते हैं छोटा सा कारण होता है जिससे देखा जाता है कि पूरा परिवार नष्ट हो जाता है छोटे से कारण से। क्यों? क्योंकि कलियुगा का इतना प्रभाव है, ऐसे लोग कलियुगा के इन चार चीजों में पूरी तरह से मग्न है, उससे प्रभावित है, जिसके कारण उनका जो जीवन है कष्टमय है, विपदामय है। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा धर्म का विनाश होने लगेगा। सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, ये सब क्या होंगे? कम होने लगेंगे। कालेन बलिला राजन, ये राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी उनको कहते हैं कि ये चीजें धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। और लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा गया है विष्णु पुराण में, वहां कहते हैं कि कलयुग में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, तो वो कहते हैं पारुषाल्पम पुरुषाल्पम बहुश्रीकम, मतलब कलयुग में पुरुष कम हो जाएंगे और स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। स्वबाहुल्यम गवाक्षयम, कुत्तों की संख्या बढ़ेगी, कुत्तों से लोग प्रेम करने लगे, लेकिन गायों की संख्या कम हो जाएगी, गायों को खाएंगे काट काट के, इतने पापाशाल। हाँ, जब ओलंपिक हुआ था, क्या था बीच में दिल्ली में, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ मीन्स कॉमन, सारे लोगों का जो वेल्थ है, इन्होंने सारा हरिबोल मतलब खत्म कर दिया, कॉमन सबके धन को ले लिया। धन कहां से आ रहा है उनके पास? आप सब जनमानस से तो आ रहा है, कॉमनवेल्थ, सारे वेल्थ को ले लिया और उसको पापाचार में लगा दिया। इन्होंने इतनी हजार गाय, 20 कितने हजार गाय काटी, किसके लिए? जो आए थे विदेशी, जो भी भाग ले रहे थे ओलंपिक में, उनको खाने के लिए। भारत जो अध्यात्म का अध्यात्म, जिसके पास एकमेव धन है, जैसे चाइना को गर्व है अपनी टेक्नोलॉजी से, है ना, सब चीजें मेड इन चाइना। फ्रांस को गर्व है, वो स्पेशलिटी है फ्रांस की, सेंट जो सेंट मार्टिन है उसमें। तो भारत का किस में गर्व है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। लोग भारत को इस दृष्टि से देखते हैं और भारत को, भारत में आते हैं अध्यात्म को समझने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है? स्वबाहुल्य, धीरे धीरे कलियुगा में लोग कुत्तों की संख्या बढ़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको नहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, धुलाएंगे, कार में घुमाएंगे, साफ सुलाएंगे, और गायों को क्या करेंगे? काटेंगे, कसाई खाना खोलेंगे जिसमें गाय का मांस खाएंगे। कितना दुर्भाग्य है। सुरापा ब्रह्मवादिना, और जो बड़े बड़े प्रवचन करता है, ब्राह्मण गण है, साधु गण है, वो सुरापा क्या पीना शुरू करेंगे? शराब। पतिन पुत्रान वंच इत्वा गमिष्यन्ति श्रियोन्यतः, कलियुगा की जो स्त्रियां हैं धीरे धीरे पति पुत्र आदि को त्याग कर दूसरी जगह भाग जाएंगी। द्विषंति पितरम पुत्रा गुरु शिष्य द्विषंति च, कलियुगा में जो बेटा और बाप है आपस में उनका मिलाप होना कठिन है, द्वेष रखेंगे एक दूसरे से। इसलिए आप देखो विदेशों में बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते, टीनेजर, वो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते, जीवन में फिर से कभी नहीं मिलते, इतना बड़ा स्थिति है, भयावह स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में लोग एक एक बड़े बड़े घरों में अकेला व्यक्ति रह रहा है, वो बाहर भी निकले 10 मिनट चले तो भी उससे कोई बात करने वाला नहीं है, एकाकीपना वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति हो गई है। तो क्यों? पितरम पुत्रा द्विषन्ति च, पिता और पुत्र एक दूसरे से द्वेष रखेंगे। शिष्य द्विषन्ति च गुरु, गुरु के साथ भी शिष्य लोग क्या करेंगे? द्वेष भावना को रखेंगे। पतिंच वनिता वैसी कलो घोरे समागते, और कलयुग इतना घोर हो जाएगा कि जो वनिता है, पत्नी आदि है, वो पति से क्या करने लगेंगे? द्वेष करने लगेंगे। लोभाभिभूत मानसा सर्वे दुष्कर्म शालिन, सारे लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। परान्न लोलुपा नित्यम भविष्यन्ति द्विजातीय, द्विजातीय में द्विज ब्राह्मण क्या होंगे? उनकी आंखें दूसरों के धन और भोजन में होंगी, हाँ इस प्रकार से उनका जीवन होगा। परस्त्रे निरतः सर्वे परद्रव्य परायणा, दूसरे स्त्री का उपभोग करना चाहेंगे और दूसरे का द्रव्य प्राप्त करना चाहेंगे। और लोग गाय से तब तक प्रेम करेंगे जब तक वो दूध देती है, दूध देना बंद हो गया उसको कहाँ भेजेंगे, कसाई खाना। तो ये कलयुग के घोर लक्षणों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। युगांते च हरेर नामा नैव कच्चित् स्मरति, क्योंकि युग के अंत इतना ये कलयुग भया हो जाएगा कि लोग हरे का नाम भी उनके मुख से नहीं निकल पाएगा, इतनी भयावह स्थिति होगी उनके जीवन की। तो शास्त्र बहुत सारे इन कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि जो गुरु है साधु है शिष्य बनाएंगे केवल किस लिए, अपनी उपजीविका चलाने के लिए, अपने भोजन की पूर्ति होने के लिए। और जो ब्राह्मण गण है वो केवल दिखावा के लिए वो रखेंगे, जने वो रखेंगे धागा लगा के और चिल्लाएंगे मैं कौन हूं ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म शुद्र का है। त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी एक वेदी, हाँ लेकिन कार्य क्या करते हैं, हम एक एक व्यक्ति को मिले तो हमने पूछे क्या करते, कहते हमारा ना जूते का बिजनेस है चप्पल का बिजनेस है, लेकिन कहते चतुर्वेदी हो। चतुर्वेदी उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह भगवत भक्ति के कार्य में लगना चाहिए। और कलयुग में लोग स्नान एवं ही प्रसादनम, मतलब वो बहुत भाग्यशाली होंगे जिन्होंने स्नान कर लिया है। कई बार आलस करते लोग स्नान नहीं करते, कलयुग में कहा है कि बिना स्नान के खाएंगे लोग, भोजन कैसे करेंगे स्नान किए बिना करेंगे, ये कलयुग की दुर्दशा है। क्योंकि आजकल स्नान तो बड़े बड़े सेंट मार देते हैं ऊपर से नीचे ताकि पता ना चले स्नान किया है ना किया, तो कलयुग की भयावह स्थिति है। हाँ तो ऐसे कलयुग में व्यक्ति दाक्षम कुटुंब भरने ना, व्यक्ति सोचता है वो एक्सपर्ट उसे कहेंगे दक्ष है जो अपने कुटुंब का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा है, या वो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य उदर भरण उदर भरता स्वार्थ, व्यक्ति कलयुग में जीवन का लक्ष्य इसी में मानेगा कि केवल पेट भरना है बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इससे परे उसको कुछ पता नहीं होगा। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो कलयुग है जिसके लक्षणों का वर्णन शास्त्रों में बहुत अधिक मात्रा में किया है, मैंने तो दो तीन श्लोकों को ही पढ़ा बल्कि कई अध्यायों में उनका वर्णन आता है। और शास्त्र कहते हैं कि कलयुग जैसे बढ़ेगा व्यक्ति की आयु अधिक से अधिक 20 साल होगी या 12 साल, 5-6 साल में बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये कलयुग की दुर्दशा है। तो लेकिन ऐसा भयावह पापमय कलयुग होने के बावजूद भी शास्त्र उसका बहुत अधिक गुणगान करते हैं, क्या करते हैं गुणगान करते हैं। इसलिए कलयुग को धन्य कलि कहा गया है कि ये कलयुग बहुत धन्य है प्रभावशाली है, वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस कलयुग का लाभ उठा सकते हैं। किस प्रकार से, क्यों इतना अच्छा है कलयुग फिर भी, एक बार सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सोच रहे थे कस्मिन काले अल्प को धर्म ददाति सुमहत फलम, कौन सा समय है जो थोड़ा सा कार्य करने से भी महान फल प्राप्त हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या करने से कौन से समय में। तो ये सारे लोग आपस में बात कर रहे थे ऋषि मुनि, तो कुछ निष्कर्ष पर नहीं आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमें व्यास देव के पास जाना चाहिए, हाँ व्यास देव के पास जाना चाहिए क्योंकि वो सब चीजों की ज्ञाता है सर्वज्ञ है। तो जब ये व्यास देव के पास गए तो व्यास देव उस समय नदी में स्नान कर रहे थे अकेले और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्या कलयुग ही श्रेष्ठ है, क्या बोल रहे थे कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, ऐसा वो कह रहे थे। अभी ये जो लोग ये जो सारे मुनि इकट्ठा हो गए थे और देखा सारे शास्त्रों को जिन्होंने लिखा प्रदान किया, जो भी शास्त्र आप पढ़ते हैं किसके द्वारा दिए गए हैं, व्यास देव के द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे व्यास देव के द्वारा दिए गए हैं सारे शास्त्र, तो ये व्यास देव क्या कर रहे हैं, हमें तो भ्रमित कर रहे हैं कि कलयुग ही श्रेष्ठ है शूद्र ही श्रेष्ठ है, तो जब स्नान करके बाहर आए तो उनको पूछा कि व्यासदेव आप बताइए क्यों आप पहरे में श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि यत्कृते दशभिर्वर्षे त्रेतायाम हयनेन तत् द्वापारे तच्छमासेन हयो रात्रेन तत्कलो, कि यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसका फल लाभ सत्ययुग में 10 साल बिताने पड़ते हैं उस कार्य के लिए, उसके फल के लिए, और जो त्रेता युग है उसमें 1 साल, और जो द्वापर युग है उसमें 1 महीना। लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई भी आध्यात्मिक कार्य करता है, जब भगवत प्राप्ति भी वो भगवत प्राप्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है अहोरात्र में, केवल 1 दिन और 1 रात इनफ है। इसलिए सुमहत फलम, महान फल व्यक्ति कलियुगा में प्राप्त कर सकता है जब वो क्या करे, आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के इन सारे दोषों का वर्णन किया कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत्गुण। हे राजा परीक्षित, कलियुग तो सारे दोषों का सागर है, दोष ही दोष है, जहां भी किसी में भी आप दोष निकाल सकते हो, हर चीज दोष से पूर्ण है। लेकिन उन्होंने कहा अस्त एक महान गुण, कलियुगा में एक बहुत अच्छा गुण है, क्या है वो महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण शह मुक्त संग परम रचित, कि भगवान के नामों का कीर्तन ये सर्वाधिक पवित्र करने वाला महान गुण है। और वो क्या है कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कारण से परीक्षित महाराज ने कली को मारा नहीं, क्योंकि कलियुग में सर्वाधिक मूल्यवान गुण है, क्वालिटी है भगवान के नाम का संकीर्तन। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृतेय ध्यायतो विष्णु, जो लाभ सत्य युगा में भगवान का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने से होता है, द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाओ उनकी पूजा करते रहो विग्रहों की, वही लाभ कलो तद हरि कीर्तना, वही लाभ कलयुग में किससे प्राप्त होता है, हरि कीर्तन से। कलयुग में ध्यान लगाना होता था कितने सालों के लिए, लेकिन ध्यान भ्रष्ट हो जाता था। तो लेकिन कलियुग में कोई व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, महान सौभाग्यशाली है। इसलिए हर युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन हैं, और भगवान नाम संकीर्तन ये महासाधन है, क्या है, महासाधन, और हर युग में भगवान नाम संकीर्तन पावरफुल है। हर युग में क्या है भगवान नाम, ध्रुव महाराज सत्य युग में थे तब उस समय को कौन से नाम का जप किया था उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि। तो भगवान के तो अनंत कोटि नाम है, सहस्र नाम है, लेकिन हर युग के लिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि एक तारक ब्रह्म नाम होता है, मतलब उसमें वो स्पेसिफिकली उस युग में जीवों को डिलीवर मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्रास होते थे, आपकी जानकारी के लिए मैं पढ़ता हूं। शास्त्र कहते कि सत्ययुग में भगवान नाम मंत्र कौन सा था, नारायण परा वेदा नारायण पराक्षरा नारायण परा मुक्ति नारायण परागति, ये मंत्र का जाप किया करते थे लोग। त्रेतायुग में राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदना कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन, इस नाम का उच्चारण करते थे इस मंत्र का। और द्वापर युग में हरे मुरारे मधु कैच बारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराशय माम जगदीश रक्षा, इस प्रकार से हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कि हमें इस प्रकार से अपना आध्यात्मिक जीवन को तरोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए कि यतो मत ततो पत, मुझे जो अच्छा लगता है ये मेरे अनुसार ये ठीक है, ये नहीं, ये उचित नहीं है। हमें आश्रय किस चीज का लेना चाहिए, शास्त्र का, कि शास्त्र क्या कहते हैं, यानी कि मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, टेलीविजन क्या कर रहा है, मूवी क्या कह रहा है, नहीं, ये सब भ्रम भ्रमित भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं। हाँ, हमें क्या कहां से गाइडेंस लेना चाहिए? तीन चीजों से, साधु, गुरु, शास्त्र। तो साधु ठीक है या नहीं है वो कैसे हम समझे? ये दो चीजों से, गुरु और शास्त्र। गुरु ठीक है या नहीं है वो कैसे समझे? शास्त्र और साधु। और शास्त्रों को समझा जाता है साधु गुरु या भक्तों के मार्गदर्शन से। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम क्या नहीं करते? शास्त्रों का आधार नहीं लेते। इसलिए ये जो इस्कॉन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ है, इसका आधार एकमेव है। क्या है? प्रभुपाद कहा करते थे, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें ही आधार है। और पुस्तकें कौन सी है? दो प्रमुख है, गीता और श्रीमद् भागवतम। ये आधार, क्योंकि कोई भी ज्ञान, जिस प्रकार से हम देखते हैं कोर्ट में भी जो एडवोकेट है, वकील है, वो कुछ बोलता है तो वो कहां से कोट करता है? कानून की किताब से, दफा 302 के अनुसार ये है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो कलयुग में जिस प्रकार से शास्त्रों में कृष्ण संहिता जो ग्रंथ है उसमें सारे मंत्र दिए गए हैं, उसी में वर्णन आता है कि कलयुग का जो भगवान नाम, सर्वोत्कृष्ट भगवान नाम है कलयुग के लिए स्पेशली, वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग की शुरुआत हुई और कलयुग की इस दयनीय दशा को जब नारद मुनि ने देखा, नारद से रहा नहीं गया, उनका जो जीवन है वो दुख अनुभव करने लगे। तो नारद मुनि ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के नीच निम्न मूर्ख लोग। तो ब्रह्मा जी के पास गया, कहा, ब्रह्मा जी प्लीज आप मुझे बताइए। तो ये सारा संवाद कलि संतरण उपनिषद में हमें पढ़ने को मिलता है। वहां जब नारद गए तो नारद ने उनको पूछा, तो ब्रह्मा ने कहा, इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम। हे नारद, ये कलियुग के जीव यदि भगवान के 16 अक्षरों के नाम का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो कलियुग के जो सारे कल्मश है वो क्या हो जाते हैं? विनाश। कलि कल्मश नाशनम, ना तो परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेश दृश्यते, सारे वेदों को आप ढूंढते रहो, पढ़ते रहो, इन सब चीजों की गवेषणा की गई है। तो इसलिए उन्होंने कौन सा वो मंत्र है, भगवान नाम है, उन्होंने सारे कृष्ण मंत्र को बोला, पूरा बोला ब्रह्मा ने। तो वास्तव में जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते केमिस्ट के पास, और वहां का ये नहीं कहते कि सर दर्द हो रहा है, आपका मेडिकल शॉप तो बहुत सारी दवाइयों से भरा है, सारी दवाइयां है, कुछ भी दवाई दे दो। कहते क्या पैसे? नहीं, प्रिस्क्राइब्ड बाय MBBS डॉक्टर। कौन से डॉक्टर ने चिट्ठी लिखता है ना, डॉक्टर देता है तभी आप वहां देते। इसी प्रकार से हमें प्रिस्क्राइब कौन करते हैं? शास्त्र, आचार्य, महान भगवान से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे कोई भी दवाई दे दो, पर्टिकुलर दवाई चाहिए तभी सर दर्द जाएगा। उसी प्रकार से कलयुग है, कलयुग के सारे दोषों को देखते हुए उसके लिए भगवान का पर्टिकुलर नाम चाहिए, तो शास्त्रीय भगवान नाम को देते हैं। तो ये कोई मनगणन चीज नहीं है, या ये किसी ने बनाया नहीं। सारा आधार क्या है इस्कॉन में? शास्त्र। लोग बातें तो बहुत पंडित के समान करते हैं, गीता के सारे श्लोक याद रखेंगे, लेकिन जीवन में वो लागू नहीं करेंगे। तो ऐसे लाभ क्या भगवत गीता का पढ़ने का, बड़े बड़े प्रवचन आदि देने का? लेकिन हजारों लोग हैं जो अपने आप को विद्वान घोषित करते हैं, तभी लाभ है जब व्यक्ति उसको समझता है और अपने आचरण में डालता है। इसीलिए भगवान का नाम जो व्यक्ति लेता है वो सबसे बड़ा चतुर है। हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन बजे कृष्ण से बड़ा चतुर। हम सब चतुर बनना चाहते हैं कि नहीं? चतुर व्यक्ति कौन है? हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, भगवान का नाम बहुत ही स्वीट है, कितना मीठा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जय जन भजे कृष्ण, जो भगवान की भक्ति करता है, इस नाम का उच्चारण करता है, उससे चतुर व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। बाकी तो बस अपना जीवन पशुवत गवा रहे हैं। तो इसलिए हमें वास्तव में बुद्धिमान या चतुर बनना है तो भगवान का नाम, जो कलयुग का मेन आश्रय है, भगवान का नाम। ये जो हरे कृष्णा संस्था स्थापित हुई है भगवान के नाम से, हाँ, श्रील प्रभुपाद, हाँ, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, अमेरिका गए तो उनके पास कुछ भौतिक वस्तुएं नहीं थी, उनके पास केवल दो चीजें थी, एक तो श्रीमद् भागवतम को ले गए थे अपने साथ, जो पहला एक ही बुक था उनके पास, उन्होंने बहुत कष्ट उठाते हुए उन्होंने दिल्ली में प्रिंट किया था। वो वृंदावन में रहा करते थे, छोटे से कमरे में, आप भी आज वृंदावन जाएंगे तो वहां का वो स्थान है, और मथुरा से वो ट्रेन लेते थे, थर्ड क्लास के डब्बे में बैठ के आते थे, केवल इसलिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लोगों से सहायता लूंगा और श्रीमद् भागवतम को छापूंगा और बांटूंगा, ताकि इसी के द्वारा ही लोगों के जीवन में सुख समाधान और संपन्नता आ सकती है, और किसी चीज से नहीं। इतना उन्होंने खुद ही लिखते थे, टाइप करते थे, प्रिंटिंग प्रेस में कागज उठा के ले जाते थे, छपवाते थे और रोड में जाके बांटते थे कि लो आओ। लाल बहादुर शास्त्री से भी वो मिले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस प्रकार से उन्होंने इतना कष्ट उठाया, केवल किसके लिए? सारे जीवों के लिए। 70 साल की आयु में, और उनके पास जब 40 ही रुपए थे, उनके गुरु ने कहा था कि तुम अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हो, कि गीता श्रीमद् भागवत आदि का प्रचार करो विदेशों में, क्योंकि ये जो ज्ञान ये केवल हिंदू आदि के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा है, भगवान का अंश है। तो वो अमेरिका जाते, कैसे जाते हैं? 40 रुपए उनके पास, एक बहुत बड़े जहाज बोट में उनको जाने का मौका मिलता है फ्री में, एक महीना समंदर का सफर करके 40 रुपए, और श्रीमद् भागवतम की एक एक ग्रंथ उनके पास था, बस उनके पास और कुछ नहीं था, अपने एक छोटा सा छाता ले गए थे और कोई नहीं, पैसे नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं। और आज जाते जाते बोट में उनको 3 हार्ट अटैक आए, और उन्होंने उस समय कविता लिखी, आज भी हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे इतना दूर लेके जा रहे हो। जब वो पहुंचे वहां न्यूयॉर्क, पहुंचे न्यूयॉर्क में अमेरिका में, उनको ये भी पता नहीं था कि मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहां रहूंगा, हाँ, वहां में क्या खाऊंगा, क्योंकि विदेशी लोगों का फ्रिज खोलोगे तो शराब, बियर, अंडे, मांस, मछली, मदिरा यही मिलता है। हाँ, लेकिन इनका पूरा श्रद्धा किसमें था? भगवान कृष्ण में। उन्होंने लिखा कि हे कृष्ण, मेरा नाम भक्ति वेदांत है, हाँ, भक्ति मुझमें ना भक्ति है, और वेद, वेद का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, लेकिन ना मुझमें भक्ति है ना ज्ञान है, हाँ, लेकिन एक गुण मुझमें है। उन्होंने कहा हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है ना, हाँ, ये जो भगवत नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके प्रति मेरा पूरा श्रद्धा है, और इसी कारण से मैं जानता हूं कि ये लोग जिनका जीवन रजोगुण में है, तमोगुण में है, पापाचार में लगे हुए हैं दिन रात, ये लोगों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि आपका नाम क्या है? सबसे अधिक शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, प्रभावशाली है। और वो गए, अकेले रहते थे, वो ऐसे स्थान में रहते थे जहां, हाँ, वो एक फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, बावरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क का सबसे गंदा एरिया, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, तो सीढ़ियों में नीचे उतरेंगे तो शराबी, हाँ, सब गिरे होते थे वहां, उनके ऊपर से कूद के जाके अपने रूम में जाना होता था, इतनी बुरी सिचुएशन थी। लेकिन रोज वो निकलते थे बाहर अपने रूम से, और वहां एक गार्डन था न्यूयॉर्क में बहुत फेमस, जिसका नाम था टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। उस पार्क में जाकर करताल लेकर अकेले पेड़ के नीचे क्या जब ये करते थे, कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान नाम का उन्होंने कीर्तन किया। और देखा अमेरिकन लड़के लड़कियां सब आकर्षित हो रही थी भगवान नाम से, उनको क्या पता ये भगवान नाम आपके राम कृष्ण कौन है, लेकिन भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, वो किसी भी जीव को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जब भगवान नाम संकीर्तन होता है रोड में, हमारे भक्त लोग जाते हैं, नाचते गाते हैं, लोग घरों से देखते हैं, अरे ये लोग कितने खुश है, नाच रहे गा रहे। भगवान नाम जब होता है, कीर्तन होता है, तो नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। किसका भोजन है? आत्मा का। हमारा जीवन जा रहा है शरीर का भोजन बनाने में, शरीर को खिलाने में, नहलाने में, पिलाने में, सुलाने में, लेकिन बेचारा आत्मा है अंदर, उसको हम उसका भोजन नहीं दे रहे, इसलिए हम दुखी हैं। एक पिंजड़े की तुलना की गई है इस शरीर से, और उसके अंदर पंछी आत्मा है, जिसका ज्ञान हम भगवद गीता के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान का नाम को हमें अपने जीवन में अपना असली मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये खासियत है। क्यों इतना हमें प्रभावशाली लगता है? वही तो महामंत्र है, कितनी बार हम सुनते हैं लेकिन थकते नहीं है, आनंद अनुभव करते हैं। किसी को कहा जाए कोका कोला का जाप करो, क्या करो? कोका कोला, परेशान हो जाएगा, कहेगा क्या है कोका कोला, आया पानी, आपको प्यास लगी और आपको कहा जाए बस पानी पानी पानी, वाटर वाटर करते रहो, प्यास बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस जगत की वस्तु और उस वस्तु का नाम, ये दोनों एक नहीं है, अलग है। लेकिन कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही चीज है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। इसलिए भगवान का नाम को व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन बनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय हमारी सफलता क्या है? अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय किस कौन सी चीज मुंह से निकलनी चाहिए? भगवान का नाम। हम एक बार उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहे थे 10-15 दिन के लिए, तो किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया, तो उनके घर गए थे 5-6 वक्त, तो वहां वो लोग सबको भोजन प्रसाद दे रहे थे, सब बैठे थे, तो देखा वो हर एक के सामने कोको कोला रख रहे थे, कोका कोला का बोतल रख रहे थे। तो हमने पूछा कि क्या है सबको आप कोका कोला दे रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो पिताजी थे, हाँ, वो भोला के भक्त थे। इसके भक्त थे भोला जी के। जब उनका अंतिम समय आया, मरने वाले थे, तो हम सब उनके इर्द गिर्द खड़े थे, हमने कहा बाबूजी हम भोला बोलो, तो उन्होंने क्या बोला? कोका कोला। क्या बोला? कोका कोला। तो क्यों बोला? हमने कहा ये कैसे हो गया? कहते वो रोज अपने दुकान में रोज कितनी बार कोका कोला का बोतल सामने होता था, पीते रहते थे। तो जो चीज रोज हम करेंगे उसी का ही तो स्मरण होगा मृत्यु के समय। आप मत ये सोचो कि आखिरी समय में मैं कुछ करूंगा, धोखा दूंगा यमराज को, नहीं, आप धोखा नहीं दे सकते, आपको यमराज धोखा देंगे। तो भगवान नाम हमें स्वीकार करना है मृत्यु के समय, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज रोज भगवान नाम का जप करना चाहिए। जिस प्रकार हम खाना भोजन करना भूलते हैं, क्या आप लोग कोई भूला कि बहुत दिन हो गए भोजन ही नहीं किया, हाँ, लेकिन भगवान नाम लेना भूलते हैं, जो हमारे हम इसी कारण से दुखी हैं। इसलिए मैं आखिरी एक लीला सुनाता हूँ और फिर हम उसको विराम देंगे कि हाँ, आप देखते हैं रामायण में, हाँ, जब सारे वानर सेना को नदी समंदर को पार करना था, हाँ, तो इंजीनियर भगवान राम के पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर ये थे, नील 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 थे। तो सारे सोच रहे थे कि कैसे पार किया जाए। एक बार जब भगवान ये जो हनुमान जी जब वहां पहुंचे, लंका में पहुंचे, सीता महारानी को मिले और उन्होंने कहा अरे तुम तो एक वानर हो, लेकिन क्या सामर्थ्य पूरे इसको लांग के आ गए हो, किसको? समंदर को। उन्होंने कहा हे सीता देवी, क्यों मैं उस समंदर को पार कर पाया? क्योंकि मैंने किस नाम का उच्चारण किया है? भगवान राम। उनका उनका विमान बहुत अच्छा है, उनका जब उड़ना होता है तो क्या करते हैं वो, जय श्री राम, भगवान राम का नाम लेते ऊपर चले जाते हैं, जब नीचे आना है तो फिर शांत हो जाते हैं, नीचे आते हैं। तो कहते हैं कि हे सीता देवी, मैं भगवान राम के नाम का उच्चारण करने मात्र से समुद्र का साइज इतना छोटा हो गया, जिस प्रकार से एक बछड़ा का खुर का चिन्ह हो जाता है बारिश के दिनों में, और उसमें पानी रह जाता है ना, तो उसको छोटा सा बच्चा भी लाग सकता है। उसी प्रकार से भगवान नाम का इतना सामर्थ्य है कि इस सागर को मैं सरलता से पार कर पाया। हाँ, तो भव सागर को, इस जन्म मृत्यु के भव सागर को क्यों नहीं प्राप्त पार कर सकता। तो जब इनको ब्रिज बनाना था तो सोचा कैसे करें, तो किसी ने आइडिया निकाली कि हनुमान आदि बहुत चतुर थे, सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते हैं हनुमान, राम नाम उनके मुंह से रुकता ही नहीं और हमारी जीभ हिलती नहीं, कृष्ण नाम लेती नहीं, चुप रहती है। किसी का निंदा करना हो, चुगली करना हो, गालियां देनी हो और कुछ करना हो तो पूरा साउंड इतना लाउड हो जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब इनको ब्रिज बनाना था, उन्होंने कहा कि पत्थरों में क्या लिखना चाहिए, भगवान राम का नाम लिखा, किसी एक बंदर ने लिखा, लिख के डाला, देखा क्या चमत्कार, पत्थर तैरने लगा। जैसे तैरा तो देखा भगवान राम भी एक चीज को देख रहे थे, सारे बंदर, फिर एक बंदर गया स्टेशनरी के दुकान में, कहा गया क्योंकि अभी उनको नाम लिखना था, पेन चाहिए, तो इतने सारे पेन लाए, हर बंदर के हाथ में एक एक पेन, और उस पेन से पत्थर पे क्या लिख रहे, राम, भगवान राम का नाम लिख रहे हैं, भगवान राम का नाम लिखा गया, और डालते जा रहे थे, पत्थर डूब नहीं रहा था, क्या हो रहा था, तैर रहा था सदैव। तो ये सब दृश्य भगवान राम देख रहे थे, अरे इतना पावर है मेरे नाम में, ये बंदर डालते हैं तो भी तैर जाता है, कितना भगवान का नाम शक्तिशाली है। तो एक दिन शाम को रात हो गई, भगवान राम बाहर निकले, अभी मैं भी डाल के देखता हूँ, क्या करूंगा, मैं भी एक पत्थर डाल के देखता हूँ। भगवान राम एक पत्थर उठाया, डाला, आवाज आया, वो डूब ही गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, कौन देख रहे थे उनको, हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा सेवक, सेवक का मतलब स्वामी जब तक सोता नहीं तब तक सेवक सोता नहीं, आजकल के सेवक स्वामी का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हनुमान ने देखा, कहा है प्रभु ये सब आपका कार्य नहीं है, ये आपका जॉब नहीं है, ये किसका जॉब है, ये हमारा जॉब है, हमें करने दो। तो शास्त्र कहते हैं यदि जिस व्यक्ति को भगवान ने छोड़ दिया है वो डूबेगा नहीं तो वो क्या तैरेगा क्या, डूबने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से ये पत्थर भी तैर गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने किसका आश्रय लिया था, नाम का, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाकह आपन काजे। शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप अपने स्थान में रहो, लेकिन क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम को अपने जीवन में डालो, छूटना नहीं चाहिए भगवान नाम, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जिस दिन भगवान नाम का जप ना करें हम। तो उसी प्रकार से आत्मा हम उस पत्थर के भांति हैं, उस पर हमें हरि नाम लिखना चाहिए तो हमें जगत में तैर के निकल जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से ढालिए कि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र विधि है भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का जप करना। आप में से कितने लोग जप करते हैं रोज रोज, ठीक है। तो जो लोग नहीं करते वो आज से आप माला पे शुरू करिए, ऐसे नहीं कि कई लोग कहते मन में जप करते हैं, हम कहते हैं मन में भोजन करो ना, मन में जब भोजन खाता है क्या व्यक्ति, मन में नहीं, भोजन करने के लिए बड़ा थाली और जप करने के लिए माला और थैली नहीं चाहिए, मन में करेंगे, मन तो गंदा है, मन में शास्त्र कहते 40,000 गंदी इच्छाएं आती है, कितनी बार पूरा दिन आप काउंट करोगे, आप काउंट भी नहीं कर सकते। वो तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से समंदर के किनारे खड़े हो और उसके लहरें आ रही है, कोई उसको काउंट कर पाता है नहीं, तो क्या मन तो वैसे ही दुर्गुणों से भरा पड़ा है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान नाम का जप हमें किस पर करना चाहिए, माला पर जप करना चाहिए, और नियुक्त संख्या करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसके बाद हमें सदैव भगवान नाम का स्मरण होगा। इसलिए भगवान नाम हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह के समय हम जप करें, तो पूरे दिन क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा और वही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए आप जो जप कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए अधिक से अधिक, और जो नहीं करते उन सबसे निवेदन है कि भगवान के नाम का जप करिए और रेगुलर इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। और तब तक भगवान नाम हमारे मुख में रहेगा जब हम भक्तों के संग में हैं। जैसे संगति छूटी, भगवान नाम आपके हाथ से छूट गया, आपका जीवन पापमय नरकमय बन जाएगा। तो इसलिए शास्त्र कहते, जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ लेक्चर दिया था, उसने कहा था कि दो चीजें दुर्लभ है, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तार समागमः, भगवान के केशव के प्रति भक्ति, और दूसरा दुर्लभ चीज क्या है? उनके भक्तों का संगति हमें प्राप्त होना। ये दो मनुष्य जीवन से भी ये दो चीजें बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो हजारों लोगों को मिला है फरीदाबाद में, लेकिन ये दो चीजें कहां है उनके भाग्य में? वो तो अपने गधे के जैसे दिन रात कार्य में मग्न है, धन 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 धन, हाँ, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, अशांति है, चिंता है। इस प्रकार से ये सरल उपाय है कि आप भगवान नाम का आश्रय लीजिए और नियमित रूप से प्रयास कीजिए कि भक्तों के संग में आए। भक्तों के संग में आने से, कार्यक्रम में भाग लेने से, भक्तों के द्वारा श्रवण करने से क्या होता है? भगवान के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बढ़ जाती है और कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, समीक्षा है, तो आप पूछ सकते हैं।